ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ
ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ।
ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਹਾ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ
ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ।
ਇਹ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਤਾ ਹੈ ਪਾਪੋਂ ਕੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਲ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤਾ ਸਾਬਣ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਕੀ ਵੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇ ਐਸੇ ਰੰਗੋ ਕੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲੀ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਖੇਲ ਜਿਸ ਹੋਲੀ ਕੇ ਖੇਲਨੇ ਸੇ ਤੁਝੇ ਵੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਕੋ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਹਮੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਔਰ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਠਣਾ ਮਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਕੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੇ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਬੈਠਤੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਪੇ ਅਸਥਾਨ ਪੇ ਜਾਏ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਵੋ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਬ ਤੱਕ ਜੀਰੋ? ਜਬ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਰੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੀਰੋ ਕੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਵੈਲਿਊ ਕਬ ਹੈ? ਜਬ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਏਕ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੋ ਏਕ ਲਗਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਸਮੇਂ, ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋ ਏਕਾ ਲਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਜਾਓਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿ, ਮਗਰ ਹਮੇ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਈ ਮਿਲੇ ਕੈਸੇ? ਜਬ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੇ ਕਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਬ ਤੋ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਔਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬੱਲੇ ਖਾਰ ਨੇ ਜਿਨ ਖਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਤੇ ਕਿ ਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇ ਹਮਾਰਾ ਹਾਥ ਹੀ ਐਸਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਥ ਸੇ ਹਮ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਗ ਕੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇ ਸਬਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਮਾਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਮਗਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਤੇ ਭਾਈ ਵੋ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਹਾਥ ਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਹਮ ਕਭੀ ਉਸਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈਨੇ ਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਮੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਮੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਮੇ ਸੰਗਤ ਮੇ ਆਨੇ ਕਾ ਵੀ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੰਗਤ ਮੇ ਆਨੇ ਕਾ ਵੀ ਜਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਥੇ ਨਾ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕਾ ਜੋ ਨੌਕਰ ਥਾ ਅਧਰ ਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਉਸਕਾ ਅਧਰ ਕਾ ਉਸਕੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਊਚਾ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜ਼ੋਹਰੀ ਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਬਈ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆਕਰ ਨੌਕਰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਥੀ ਊਚੀ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇ ਉਮਰ ਕਾ ਜਾਤੀ ਕਾ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
कोई छोटी उम्र वाला भी आपसे कई गुना आगे हो सकता है, कई गुना। और कई बारी ऐसा भी मिलती है बात कि 80-80, 90-90 साल की उम्र हो जाती है मगर सूझ ही नहीं आती। गुरु घर में उम्र का कोई तलक नहीं है। अगर तलक होता तो आज मेरे 8वें गुरु नानक धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह गुरगद्दी पे विराजमान न होते। हक सतनाम उम्र बचपन की मगर जोत गुरु नानक की है अंदर। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। प्यारे इसके नौकर की अवस्था को ऊंचा देखते हुए ना मेरे गुरु नानक ने सालसराय को कहा, कहने लगे सालसराय संगत किया कर। तो सालसराय जोरी कहता है बाबा मैं तो संगत करता हूं। अच्छा भाई संगत करता क्या भाई, कितने समय हो गया संगत करते? कहते सतगुरु मुझे कई साल हो गए संगत करते। तो उस समय मेरे सतगुरु ने इसके मन की तरफ नजर डाली, कहने लगे मन की तरफ देख के कहते साल सराय इतना समा हो गया संगत करते मगर जो अवस्था बन जानी चाहिए थी तेरे अंदर की अभी तक बनी नहीं, क्योंकि कई 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं संगत करते, अंदर से क्रोध नहीं जाता, अंदर से ईर्ष्या नहीं जाती, वैर विरोध नहीं जाता। इसका मतलब संगत अंदर से नहीं अभी तक खोई, अभी तो केवल दिखावा है। संगत अगर करते हो ना तो मिठास ये संगत करने वाले की पहली निशानी क्या? ये पूछा था संत अत्तर सिंह जी मस्तू आने वालों ने अपने सेवादारों से, भाई बताओ गुरु नानक के घर की पहली क्लास कौन सी? तो उनके सेवादारों ने कहा महापुरुषों आपकी सुमत जो दी हुई जो गुरु नानक के घर की पहली क्लास है वो है गुरमत हृदय गरीबी आवे, कि हृदय की निम्रता। ये गुरु नानक के घर की पहली क्लास है। अगर अंदर निम्रता नहीं है कौड़े बचन बोलते खो, अगर वैर विरोध करते खो तो प्यारे हो अभी समझ लेना गुरु नानक के घर की पहली क्लास में भी दाखला नहीं मिला। हक सतनाम अपने आप को जितना मर्जी ऊंचा कह ले मगर गुरु नानक की नजरों में तेरी गिनती जीरो। हक सतनाम पहली क्लास निम्रता मिठास। और गुरु नानक के घर की अंतिम क्लास पता कौन सी है? गुरु का भाणा मिठा करके मनना, मिठा करके तेरा किया मिठा लगे वो। तो खैर उसी बात पे आओ। महाराज कहते कि भाई इतना समा हो गया संगत करते जो चीज मिलनी चाहिए मिली नहीं। तो उस समय मेरे सतगुरु ने ना संगत करने के 3 असूल बताए थे, वो असूल सुनना। पहला असूल मेरे सतगुरु ने बताया था, कहते साल सराए और जब भी संगत में आओ अंदर निम्रता। हक सतनाम ये संगत करने का पहला असूल है निम्रता। अगर आपको गुरु ने कोई गुण दिया है ना, कोई बड़ा औहदा दे दिया, कोई कीर्तनिया बना दिया या माया ज्यादा दे दी या किसी भी बात से अगर आपको कोई गुण दिया है, किसी गुरुद्वारे का प्रधान बनाया है, किसी सोसाइटी को चलाने वाला बनाया है, कोई भी आपको अगर गुरु ने गुण दिया है ना तो गुण का मान जोड़े घर में रख के आया करो। हक सतनाम क्यों? क्योंकि अगर गुण से भर के अपने मन को ले आएगा, गुणों की खोमे से भर के मन को गुरु घर में ले आएगा तो खाली चला जाएगा। हमें इसको निकाल के आ वो बात कर जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता ओ गुर सतगुर संग की रे हम थापे। निम्रता ये पहला असूल है संगत में आने का, निम्रता। कोई भी गुण हो तेरे पल्ले अंदर हम में ना आए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती
गुरु घर में कामी बख्शे गए हैं, क्रोधी बख्शे गए, विकारी बख्शे गए हैं, मगर अहंकारी नहीं बख्शा जाता। हक सतनाम, पता नहीं क्यों मेरे सदगुरु को अहंकार करने वाला नहीं अच्छा लगता। मेरे सदगुरु ने आपका हक है, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देओ मुख लाया। हर जियो निमाणिया तू निमाणियों का मान है, मान वाले का मान नहीं। हक सतनाम कह रहे हो। पहली क्लास निम्रता, संगत में आने का असूल भी पहला यही, जब भी संगत में आओ निम्रता से आओ, ताजो गुरु की बात कोई तेरे हमें रूपी खाली मन में वो बात टिक सके, हमें से खाली मन में। बाबा नंद सिंह जी के समय ना एक जोगी हुआ जोगी, 80-85 साल की जिसकी उम्र बड़ी बंदगी की, मगर अगली मंजिल नहीं मिल रही थी इसको। एक दिन बंदगी में बैठा तो आकाशवाणी हुई, पुकार की थी इसने निरंकार के चरणों में, गरीब नवाज अगली मंजिल नहीं मिल रही, तो आकाशवाणी हुई भाई फलानी जगह पे चले जाओ, बाबा नंद सिंह जी पूर्ण बंदगी वाले महापुरुष हैं, उनके चरण पकड़ ले जाके अगला रास्ता मिल जाएगा। जब आकाशवाणी द्वारा जो रास्ता बताया गया उस मुताबिक जब फकीर पहुंचा तो बाबा नंद सिंह जी ना एक जमीन में ना खाई कह लो टोआ कह लो पंजाबी में टोआ खोद के बैठते थे, टोआ खोद के जमीन में वो क्या कहते जी हिंदी में गड्ढा, गड्ढा खोद के बैठते थे। और अपने उस वो बाबा नंद सिंह जी गड्ढे में बैठे तो ब्रिगेडियर साहब की ड्यूटी थी प्रशादा शिकाने की, ब्रिगेडियर साहब बाबा नंद सिंह जी के समय हुए प्रशादा शिकाने की। और मैं ये भी बात जब कभी सुनता हूं ना मैं अरदास करता हूं सदगुरु मेरे पे वो कृपा कब होगी, अगर वो 100 में 100 पैसे नहीं हो सकती 30-40 पैसे कर दे। बाबा नंद सिंह जी 24 घंटे जिनकी बंदगी, 24 घंटे जिनका सिमरन, 24 घंटे सिमरन होने के बावजूद एक प्रसादा खाते थे। आखो सतनाम, एक रोटी खानी। और कई बारी ना प्यार में आके ये कह देना बाबा जी ने, कह देना हम अपने गुरु नानक के भरोसे से कहते हैं अगर ये एक रोटी भी एक प्रसादा भी ना खाएं तो हमारा चलता है, हम जी सकते हैं गुरु की कृपा से, मगर ये प्रसादा एक क्यों खाते हैं कि मेरे गुरु नानक ने कहा है छोड़े अन्न करे पखंड ना स्वागण ना हो रहा है, तो खाते हैं एक प्रसादा कि गुरु के दायरे से बाहर ना हो जाएं कहीं। ब्रिगेडियर साहब की ड्यूटी प्रसादा रख के चले जाते थे, अगले बाद में जब बाबा जी प्रसादा शक लेते थाल उठा के ले जाना अगले दिन, इसी तरह ड्यूटी, वचन करने का हुक्म नहीं था, वचन नहीं बोलने का हुक्म नहीं। तो फकीर आया तो ब्रिगेडियर साहब ना प्रसादा रख के जा रहे थे तो कहता है बाबा जी कि मैं दर्शन करने आया हूं, तो ब्रिगेडियर साहब कहते जी अभी तो मुझे भी हुक्म नहीं, दर्शनों का हुक्म नहीं, वचन करने का हुक्म नहीं, आप ऐसे करो इसी जगह पे खड़े हो जाओ, अगर मौज कोई महापुरुषों की तो बात बन जाएगी, क्योंकि नाम जपने वाले को परवाह किसी की नहीं, परवाह ना ही बाज सच्चे नाए। कहते इधर खड़े हो जाओ अगर बात बन गई मौज आ गई महापुरुषों की तो बात हो जाएगी। फकीर खड़ा हो गया तो मन में अरदासें करता है। अब उधर बाबा जी उस खड्डे में बैठे दिल की जान लेते थे, नाम जप के ना मन का शीशा साफ हो जाता है, बाबा जी दिल की बड़ी जल्दी जान लेते थे। अभी फकीर अरदास कर रहा है, बाबा जी अपने खड्डे में वहीं पे खड़े हो गए, फकीर ने दर्शन किए, दूर से ना अपना जोड़ा उतारा, दूर से बाबा जी के चरणों में नमस्कार कर दी। और उधर बाबा जी खड़े मुख से कोई बात नहीं की, पता क्या किया, बाबा नंद सिंह जी खड्डे से बाहर आए, इस फकीर के पास इसने जो अपना जोड़ा अपनी चप्पल जो जोड़ा उतारा था उस जोड़े को अपने हाथ में लिया और अपने दाढ़े के साथ जोड़े को साफ करके उसी जगह पे जोड़ा रख के फिर खड्डे में जाके सिमरन में बैठ गए। आखो सतनाम, इतनी बात देख के फकीर फूट फूट के रोने लगा। ब्रिगेडियर साहब आए, भाई कोई वचन हुआ कि क्या बात हुई, तो उस समय फकीर कहता है बाबा नंद सिंह जी मैं जो बात अपने मन में लेके आया था, मेरी बात का जवाब बिना बोले ही दे गए। भाई क्या बात थी आपके मन में? कहते हैं मेरे मन में था, मुझे इतने साल हो गए मैं बंदगी कर रहा हूं, मुझे रास्ता नहीं मिला। मैंने इतनी बंदगी की, मैंने इतना जप तप किया, तो बाबा नंद सिंह जी एक मिनट में मुझे जवाब दे गए कि भाई तू कहां अहंकार रूपी मैं को लेके फिर रहा है कि मैंने बंदगी की, मैंने जप तप किया। इधर देख, अब बंदगी जितनी मर्जी बढ़ जाए, जितना मर्जी सिमरन बढ़ जाए, मगर अपने मन को उधर ही रखना। हे गरीब नवाज, हे गुरु नानक, मैं तेरे घर का जोड़े झाड़ने वाला ही हूँ। आखो सतनाम, मैं तेरे घर का कुकर हूँ। मैं कुछ बना नहीं, सब कुछ होते हुए निमाना नितानापन बड़ी जरूरत है।
बहुत
ये गुरु नानक की संगत में आने का पहला असूल मेरे बाबे नानक ने बताया, आप ही बताते हैं। कहते भाई अगर संगत में आना है, पहला असूल सुन, निम्रता से आ। दूसरा असूल, अब इन असूलों पे मैं आधा आधा मिनट ही लगाऊंगा, ज्यादा समय नहीं। दूसरा असूल सुनना संगत में आने का प्यारे, और दूसरा असूल मन को एकाग्र करके बैठा करो, एकाग्रता। कई मुझे संगत कहती है जी हम बड़ा यत्न करते हैं, मन एकाग्र रहता ही नहीं, होता ही नहीं, क्या करें? हां प्यारे हो, एक बात है, एक जो मुसलमान था ना, मुसलमान, उसने ना बड़ी बंदगी की, बड़ी तस्बीहां फेरी, बड़े माथे रगड़े, खुदा के दर्शन हो गए उसको, इतनी बंदगी बढ़ गई। जब दर्शन हुए उनको अल्लाह के, उस मुसलमान को, ये केवल एक दृष्टांत है समझने, समझाने के लिए, समझना इस बात को। जब दर्शन हुए खुदा के, तो दो मिनट बाद ही ना उनका जो इष्ट था, जो खुदा था, उनका चेहरा उदास हो गया। तो वो पूछता है मुसलमान, भाई अभी तो आप प्रसन्न थे, अभी आपका चेहरा उदास हो गया, क्या कारण? तो वो उनका इष्ट कहता है, कहने लगा, भाई इसलिए मेरा चेहरा उदास हो गया भाई, तूने बड़ी माला फेरी, बड़ी तस्बीहां फेरी, बड़े माथे रगड़े, मगर मैंने दरगाह में नजर डाली है, तेरा एक भी टेका हुआ माथा, तेरी एक भी फेरी हुई माला दरगाह में लेखे नहीं लगी। हक सतनाम। इतनी बात सुनते ही ना मुसलमान ने नाचना शुरू कर दिया। वो पूछते हैं, उनका इष्ट पूछता है, भाई नाचता क्यों है, कहीं गलत तो नहीं सुन लिया? कहता नहीं, मैंने सही सुना है, आपने यही कहा ना, मेरी एक भी फेरी हुई माला, एक भी माथा रगड़ा हुआ दरगाह में लेखे नहीं लगा। कहते मैंने यही सुना है, भाई फिर नाचता क्यों है? तो फिर वो मुसलमान कहता है, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे खुदा, नमाज पढ़ना, तस्बीहां फेरनी, माथे रगड़ने, ये मेरी ड्यूटी थी, दरगाह में लेखे लगाना आपकी ड्यूटी, अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं की तो मेरा क्या कसूर है? आखो सतनाम, मैंने तो अपनी ड्यूटी दी ना, अगर आपने अपनी नहीं की तो मेरा क्या कसूर? मेरे कहने का इशारा, यत्न करो मन जुड़े, अगर नहीं जुड़ता तन करके अपनी ड्यूटी कभी मत छोड़ा करो, एक दिन आएगा मन जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कई लोग कहते हैं जी जब तक अंदर पापों की मैल हो मन ना जुड़े, वाणी नहीं पढ़नी चाहिए, मगर यह गलत बात है। अगर मन जुड़े ना जुड़े, अंदर पापों की मैल है, तो वाणी पढ़नी छोड़ो ना, सिमरन करना छोड़ो ना, क्योंकि मेरे सदगुरु कहते हैं कि अगर सिमरन करेगा तो मैल जाएगी तब। आखो सतनाम, मैल तो तब की जाएगी जब सिमरन करेगा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, बोलते नहीं सारे, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद सिमरन करेगा तो मैल तब की जाएगी। यत्न करो मन जुड़े, क्योंकि तो गुरु घर में मन जुड़ने की बड़ी महानता है। वो गुरु नानक साहब के समय ना टंडोरा फिर गया कि आज गुरु नानक साहब नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, नमाज। तो जब नमाज पढ़ने की बारी आई, नमाज काजी ने पढ़नी शुरू कर दी, सारे नमाज पढ़ रहे, बाबा जी चुप। नमाज की समाप्ति हुई, नवाब भी खड़ा था पास, नवाब कहता है गुरु नानक साहब को, सच्चे पातशाह आपने बड़ा टंडोरा फिरवा दिया कि आप नमाज पढ़ोगे, मगर आपने नमाज तो पढ़ी नहीं, क्या कारण? तो उस समय मेरे गुरु नानक साहब मुस्कुराए, कहने लगे नवाब ओ मैं नमाज पढ़ता किसके साथ, आखो सतनाम। नवाब कहता मैं नमाज ही तो पढ़ रहा था, महाराज कहते मेरा दिल नहीं करता था तेरी बात को खोलू, मगर सुन अगर खुद ही बोला, कह तो सुन ले। तन तेरा नमाज पढ़ रहा था मगर मन जो था काबुल में घोड़े खरीद रहा था, आखो सतनाम। मैं तेरे साथ कैसे नमाज पढ़ता? तो काजी को थोड़ा गुस्सा आ गया, काजी कहता महाराज ये तो नवाब के मेरे साथ नमाज पढ़ लेते, मेरी तो ड्यूटी यही है। महाराज कहते ओ काजी तू एक धार्मिक बंदा है, अब मेरा दिल नहीं करता था तेरे पर्दों को मैं नंगा करूं, हको सतनाम। मगर तूने पूछा है तो जवाब भी सुन ले। तन तेरा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था मगर मन जो था तेरा अपने घर में था कि घोड़ी ने वशेरा दिया क्या, और पीछे गहरी गहरा खड्डा क्या, वशेरा खोज गया होगा कहीं वो वशेरा जो है खड्डे में ना गिर गया हो, हक सपन हम। भाई तन करके तो नमाज पढ़ता था मगर मन घर में था, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? और गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के समय की भी बात कह, हाजिर गैर हाजिर गैर हाजिर हाजिर, जो सिख पैरे पे थे, जो उनका मन था कि जो सिख गए हैं नाटक देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, पता नहीं क्या देखते होंगे, जो तमाशा देख रहे थे उनका मन था कहीं गुरु गोविंद सिंह जी उठ ना जाएं, तो सुबह महाराज ने फैसला दे दिया, कहते हाजिर गैर हाजिर गैर हाजिर हाजिर हक सपन हम, कि भाव जो बाहर गए थे तमाशा देखने के लिए उनका मन इधर रहा था कहीं महाराज उठ ना गए हों, और जो मेरे पास पैरे पे खड़े थे उनका मन था पता नहीं क्या देखते होंगे, हक सपन हम। हाजिर गैर हाजिर और गैर हाजिर हाजिर, मन की हाजिरी की बहुत जरूरत है। जब भी संगत में बैठो मन की एकाग्रता यत्न किया करो। मेरे सदगुरु ने भी कहा ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान। ये दूसरा संगत में आने का, मैं बिल्कुल शताब्दी की स्पीड से चल रहा हूं, अब किसी भी बात की गहराई में नहीं जा रहा। तो और तीसरा संगत में आने का असूल प्यारे और श्रद्धा, जब भी संगत में आओ अपने इष्ट अपने गुरु नानक अपने गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर इतनी श्रद्धा रखो कि बाबा अच्छे सारे हैं मगर तेरे जैसा तू ही है, हाखो सतनाम। ये श्रद्धा जरूर रखा करो, श्रद्धा वालों के ही बेड़े पार होते हैं प्यारे। अब मैं कीर्तन की समाप्ति करूंगा, ये विचारे जो हैं कल के दीवान में, कल सुबह और कल रात को भी दीवान है गोविंद धाम, वहां पे आप संगत के सन्मुख होंगी कि श्रद्धा कैसे रखी जाए। ये तीसरा गुण कि जब भी संगत में आओ गुरु के ऊपर श्रद्धा। पहला कौन सा गुण था जी, गज बज के बोलो ठीली आवाज नहीं, क्या गुण था? दूसरा मन की, मैं बोलता हूं मन की आप बोलना क्या, मन की, और तीसरा गुरु के ऊपर श्रद्धा। जिसके पास तीन गुण हैं फिर उसी गुणों के कारण मेरे धन गुरु अर्जन देव जी ने कहा मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। इसमें कोई शक नहीं कि वो आप ही नहीं तरेगा, अपनी कुलों को भी तार के ले जाएगा। जो मिल गया मिलता कौन है जिसके अंदर ये तीन गुण आ जाएं। मेरे कहने का इशारा मान करो ऐसा पिता मिला है जिसने हमें हर बात हमारी झोली में डाली है, कैसे इस संसार में जीना है, कैसे संगत करनी है, क्या खाना क्या पीना क्या बोलना है, कैसे सोना है, क्या करना चाहिए तुझे। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जो मेरे सदगुरु नाम बता के गए हों। तो सलाओ अपने कर्मों को अपने भागों को, एक बार ये पंक्तियां पढ़ लो, कोई भी उठे ना, एक दो जरूरी बेनतियां आपको करनी है तो एक बार ये पढ़ो, उसके बाद कथा कीर्तन को विश्राम, कल सुबह फिर दर्शन, एक बार ये पढ़ लो उसके बाद एक दो जरूरी बेनतियां करनी है जी। गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया, गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया, भूले मार्ग जिन्ने बताया,
भूले मार्ग जिन्ने बताया,
बताया गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया पाया ऐसा
कीर्तन की समाप्ति। कीर्तन के सत्कार से जो भी व्यंत माया आप संगत की तरफ से अर्पण हुई, आपका दिया एक एक पैसा जो अमृत सर्किल वाले गेट, बेवा औरतों का जो आश्रम भाई साहब गोरखबाल सिंह जी की प्रेरणा गुरु नानक की कृपा से चल रहा है, 700 विधवा बीबियां वहां से राशन प्राप्त करती हैं और धार्मिक कार्यों के लिए आप जी का एक एक पैसा इस्तेमाल होता है। संगत को बेनती, संगत को एक जरूरी बेनती है, ये ध्यान से सुनना। एक तो अगर आप परवानगी दें तो मेरे मन में जो विचार आई है, प्यार आया है आपको देखते हुए, कि कल सुबह 4:30 से 6:30 मैं आज आपके दर्शनों के लिए जो दिल्ली से सारी टी सीरीज की टीम भी, हमारे बेदी साहब जी, प्रकाश जी और के समाप्ति, उठना अभी भी कोई नहीं, किसी ने अरदास के बाद हुक्मनामा श्रवण करके गुरु साहब जब अपने स्थान पे जाएंगे उसके बाद जाना जी। आज की दात लगा दो, लेके आए संत प्रवणे कीर्तन हुआ, बोलते नहीं थक तो नहीं गए, कीर्तन हुआ रैन सबाई। तो आओ जी जय जयकार पढ़ के आनंद साहब।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु 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 हर मन तन वसया सोई जय जयकार करे सब कोई बोलो हर जय जयकार करे सब कोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन हर मन तन वसिया सोई वाहे गुरु 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 ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾ ਵਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈ ਬੋਲੋ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ਬਦੋਤਨਗਾ ਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋਹਰਣਾ ਲੇ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਹਰਣਾ ਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿੱਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਵਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਅਰਸ ਨੂੰ ਵੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਣਿਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਮੰਨਾ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਕਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਸਾਰੀ ਕੈਸਟੋਂ ਕਾ ਬਾਰਸ ਡਾਲ ਲਗਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੀ ਕੈਸਟੋਂ ਕਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਔਰ ਦਾਸੋਂ ਕੀ ਵੀ ਜੋ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਸਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਔਰ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵੋ ਵੀ ਸੀਡੀਓ ਕਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਸਟੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਫਰੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਸੀਡੀ ਆਪ 80 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਲੇਤੇ ਹੋ ਯਹਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 50 ਰੁਪਏ ਕੀ ਸੀਡੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਸਮਝੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਡੀ ਕਾ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀਡੀਆਂ ਵੋ 50 ਰੁਪਏ ਕੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉੱਚ ਸਮਝੇ ਵੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਤ ਤਰਤਮ ਹੱਥ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਨਾਮ ਕਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਗੁਰਪਰ ਅਕਾਲ ਸਸਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਪਰ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ